ओम शांति। आप सभी यहां शांति वन में आकर फिर से चार्ज हो गए होंगे, हो गई सब माताएं चार्ज। चार्ज जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, आप सब भी यहां फिर से चार्ज हो गए, क्योंकि लगातार हमारी माया से युद्ध है और इस युद्ध में हमें विजयी बनना है। तो आज मैं आपके सामने, दादी का दिन है, दादी की बहुत सारी बातें आप दो दिन से सुनते आ रहे हैं, मैं आपको कुछ और ढंग से सुनाऊंगा। कोई भी महान आत्मा महान कैसे बनती है, क्योंकि केवल महान आत्माओं के गुणगान करना ही पर्याप्त नहीं, उनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। तो मैं इसी ढंग से आपके सामने दादी को पेश करता हूं कि सभी उनकी महानताओं से बहुत कुछ सीख लें। सभी ने दादी की वो कहानियां अवश्य सुनी होंगी, जब बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के समय की। मैं जस्ट थोड़े में सुना देता हूं। बाबा ने मुरली समाप्त की, जल्दी ही समाप्त की, और बाबा अपने रूम में पहुंचे, सीधे जाकर चारपाई पर बैठे, क्योंकि बाबा की तबीयत ढीली थी। तो दादी और कुछ बहनें बाबा के साथ गई। बस चारपाई पर बैठकर बाबा दादी को दृष्टि देने लगे, पास बुला लिया, हाथ ले लिया हाथ में, और दृष्टि देते देते गए। दादी को ये महसूस हुआ कि बाबा ने अनेक शक्तियां मुझे ट्रांसफर कर दी, और ये बात अव्यक्त बाबा ने बाद में कही भी कि उस दिन बाप ने अपनी सारी शक्तियां विल की। तो दादी को बाबा ने बहुत योग्य समझकर, जब बाबा साकार में थे, दादी उससे पहले ही 10-12 दिन पहले यज्ञ में आ गई थी पार्टी लेकर, मुंबई गाम देवी में दादी रहती थी। बाबा ने पार्टी को भेजने के बाद दादी जी को वहीं रोक लिया और मधुबन के सारे डिपार्टमेंट्स का चक्कर लगवाया 2-3 बार, और सब स्पष्ट किया कि ये डिपार्टमेंट कैसे चलते हैं। दादी सोचती थी कि पता नहीं बाबा मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं। ये रहस्य बाद में समझ में आया कि मुझे कार्य संभालना था, इसलिए यज्ञ के सभी डिपार्टमेंट से संपूर्ण परिचित होना आवश्यक था। दादी को और दीदी मनमोहिनी को चीफ बना दिया बाबा ने। तीसरे दिन अव्यक्त बाबा आए थे 21 जनवरी को, और बहुत अच्छी कार्य विधि हुई थी जिससे दोनों इन महान आत्माओं को यज्ञ की महान जिम्मेदारियां दी गई। यज्ञ बढ़ता गया। दादी रतन मोहिनी ने थोड़े में आज सुनाया, मुझे सब याद आ गया। दादी जी पुरुषार्थ के साथ सेवाओं में बहुत उमंग उत्साह रखाती थी। हम लोग हंसी में कहा करते थे, दादी न खुद चैन से बैठती न हमें बैठने देती, ये इसलिए कि जरा भी खाली हो जाएं तो प्रोग्राम बना देती थी, अब ये करो। शिवरात्रि आई, राखी आई, जो दो हमारे सेवा के बड़े त्योहार हैं, दादी सभी को डायरेक्शन दे देती थी, इतनी इतनी सेवा करनी है। तो हम देखते आए कि दादी जी के नेतृत्व में सेवाएं बहुत बढ़ी, विदेशों की सेवाएं भी बढ़ी और भारत में भी गांव गांव में सेवाएं बढ़ी। कई शिवरात्रि पर टीचर बहने जानती हैं, बाबा ने खुले रूप से, दादी जी ने खुले रूप से आदेश दिया, इतने गांव में प्रोग्राम करने हैं। उससे गीता पाठशालाएं बढ़ी, बहुत अच्छी सेवाएं हुई। मैं आपको एक सुंदर बात बीच में सुनाऊंगा। समय अनुसार हम सबको बहुत आवश्यकता है अपने मन को श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने से भरने की। याद रखेंगे, जिसके पास निगेटिव या व्यर्थ संकल्प ज्यादा होंगे उसको ही समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी ज्ञानी आत्माएं बाबा के बच्चे अपने निगेटिव संकल्पों को पॉजिटिव करने का तीव्र पुरुषार्थ करें। व्यर्थ संकल्प क्या नुकसान करते हैं, क्योंकि उनसे व्यर्थ वाइब्रेशंस फैलते हैं, उनसे निगेटिव एनर्जी फैलती है जो आत्मा से ब्रेन को जाती है और ब्रेन को कमजोर करती है, ब्रेन के कई हिस्सों को डैमेज करती है और कमजोर मन हर बात को समस्या फील करता है। दादी जी को हमने इसी रूप से देखा कि बहुत सारी बातों को वो समस्या कहती नहीं थी। और ये सभी को याद रखना है, हर छोटी बात को समस्या समझ लेना, हर बात को समस्या बना देना सबसे बड़ी समस्या है। हम अपने लेवल को इतना ऊंचा उठा दें कि बड़ी बात भी छोटी लगने लगे। सभी आज दादी दिन पर बहुत अच्छी तरह अपने स्वमान को बढ़ाएं, बड़े हम हैं, बातें बड़ी नहीं हैं। ले चलें सभी अपने चित्त में इस सुंदर बात को, हम पूर्वज हैं, हम महान आत्माएं हैं, हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, बड़े हम हैं। और जो बातें रोज जीवन में आती हैं वो बहुत छोटी हैं। स्वीकार कर लो आप सभी से, अगर बातों को छोटा समझेंगे तो हर बड़ी बात छोटी हो जाएगी। ये बहुत गहन साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है और बाबा का महावाक्य भी, किसी भी बात को बड़ा समझेंगे वो बड़ी हो जाएगी, छोटा समझेंगे छोटी हो जाएगी। तो बातों को बड़ा नहीं समझना है। मुझे एक उदाहरण याद आ गया, वो आप सबको देना चाहता हूं। कलकत्ता की एक माता जो अभी आबू में रहती है, रीटा माता नाम है, जब वो ज्ञान में आई, मुझे याद है 5 बच्चे उसको, उसका एक लड़का छोटा उसने बाबा के आगे रख दिया था कमरे में, उसकी आंखें खुली थी। उस माता को एक चीज से बहुत भय हो गया था, सुन लें आप ये बात ध्यान से। वो ज्ञान में आई, उसके गुरु ने उसको बुलाया और बहुत क्रोध किया और श्राप दे दिया तुमने गुरु को छोड़ा है, ब्रह्मा कुमारियों में गई है, तड़फ तड़फ के मरेगी, और भी कुछ कुछ कह दिया। आप जानते हैं गुरुओं का हाल। डर हो गया बेचारी को, ज्ञान अभी नहीं थी, ज्यादा नहीं था। आ गई यहां पर, दादी को सुनाई सब बात। दादी ने कहा डरो नहीं, बाबा से मिलना। व्यक्त बाबा आए, अव्यक्त बाबा को उसने अपनी ये भय की बात सुनाई। क्या करूं बाबा, सुन लो बाबा का उत्तर, हम सबके काम का उत्तर। बाबा ने कहा, बच्ची सोचोगी तो होगा, नहीं सोचोगी तो कुछ नहीं होगा। सत्य बात यही है, जब हम बहुत सोचते हैं किसी बात पर तो हम उसी तरह के वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और वो चीज होने लगती है। यदि हम सोच लें कुछ नहीं होना है, बाबा हमारे साथ बैठा है, तो सचमुच कुछ नहीं होगा। तो सभी पक्का कर दें, समस्याएं भी जीवन में आए, संकल्प कर दो बाबा मेरे साथ है, समस्या आई है सो जाएगी अवश्य। बाबा की एक सुंदर बात याद दिला दूं इस संबंध में, बहुत काम की है, आप उसको लिख लें और अपने जीवन में समा लें। समस्या आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं, समस्या आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं, जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें कौन साथ दे रहा है। अगर हमें ये स्मृति रहे, कौन मुझे साथ दे रहा है, तो बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम करने लगेंगी और समस्या नष्ट हो जाएगी। फिर से आ जाएं दादी जी पर। बाहर के बड़े बड़े ऑफिसर्स, कलेक्टर्स, कमिश्नर्स आदि जब यहां आते थे तो दादी जी के प्रशासन को देखकर, एडमिनिस्ट्रेशन को देखकर बहुत ही खुश होते थे और ये पूछते थे कि आपने ये ट्रेनिंग कहां से ली है। उन्हें लगता था उन्होंने आईएएस किया है, आईपीएस किया है, आईएफएस किया है, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सफल नहीं है। और ये दादी जो बहुत साधारण लगती है, इसने सबको एकता के सूत्र में बांधा हुआ है, यहां सब कार्य ऑटोमेटिकली चल रहा है, सब सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, क्या राज है इसका। मुझे याद है एक और बात, दादी जी जब पहली बार विदेश में गई थी 1977 में, 77 में, तब विदेश वालों ने दादी के लिए एक ही टॉपिक रख दिया था। किसी ने प्रश्न पूछ लिए, दादी जी आपकी चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पर जो अंदर की हैप्पीनेस है, इनर हैप्पीनेस, उसका राज क्या है। आप चीफ होते हुए प्रसन्न नजर आती हैं, आपके चित्त पर, चेहरे पर टेंशन की रेखाएं नहीं हैं, क्या रहस्य है इसके पीछे। तो दादी जी ने इस यही टॉपिक हो गए थे सब जगह दादी जी के भाषण के। तो कैसे हम खुश रहते हैं, तनाव को कैसे समाप्त करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा परमात्मा से नाता जोड़कर उसको जिम्मेदारियां समर्पित करके कैसे हम प्रसन्न रहते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात दादी जी ने उन दिनों सिखाई। तो हम भी अपने जीवन में अपना लें समर्पण भाव, बहुत सुंदर धारणा है और हम आत्माओं में जन्म जन्म से लौकिक रूप से भी समर्पण भाव के संस्कार हैं। अब हम समर्पित कर दें स्वयं को उस पर जो हम पर सब कुछ समर्पित करने वाला है, अपनी समस्याएं और मन के बोझ भी उसे दे दें। एक सुंदर बात और आप सबके लिए, हम चलते चलते ये सृष्टि चक्र घूमते घूमते कहां पहुंच गया है आप सबको अच्छी तरह मालूम है। कल्प का पूरा एंड आने वाला है, जहां से चक्र प्रारंभ हुआ था वहीं फिर पहुंच रहा है। तो सुन लें ध्यान से दो बातें, कलयुग के अंत में बहुत सारी बुराइयां, संपूर्ण विकार, संबंधों में कड़वाहट, व्यर्थ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसे स्वीकार करें। जो कुछ कलयुग के अंत में हो रहा है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बुरा ही होता जाएगा, अपनों से विघ्न आएंगे, आ रहे हैं। इसलिए जीवन में अपनी मेंटलिटी, अपना दृष्टिकोण ऐसा बना लें कि हम बहुत बातों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ें। दूसरी बहुत बहुत गहरा रहस्य, सभी ध्यान से सुन लें, इससे आपको अनेक बातों का उत्तर मिल जाएगा। हम वहां पहुंच गए हैं चलते चलते, आत्मा में जो कुछ 63 जन्मों का भरा हुआ है, कर्मों का खाता, विकारों का बोझ, जो कुछ हमने नाते जोड़े हैं अच्छे या बुरे 63 जन्मों से, जो आत्मा में रिकॉर्डेड हैं, नोंद हैं, वो इमर्ज होने प्रारंभ हो गए हैं। जो अब तक दबे हुए थे वो प्रकट हो रहे हैं। सभी माताएं और भाई इस बात को अच्छी तरह सुन लें, जो दबा हुआ था वो इमर्ज हो रहा है। इसलिए इसको ऐसे समझ लें आप, जैसे शहर में गंदगी का बहुत बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया हो 2-4 साल में, और अब म्युनिसिपैलिटी वाले उसे उठाने आए हों, कितनी बदबू फैल जाती है चारों ओर। तो ये गंदगी जो मन में भरी हुई है वो इमर्ज हो रही है। इसलिए बहुतों को क्या फील हो रहा है, मेरे पास आपके ही ग्रुप से कई माताएं आ गई, हमारा जीवन बहुत अच्छा चला, हमने जीवन बहुत खुशी में व्यतीत किया, हम बहुत नशे और अच्छे पुरुषार्थ में रहे, पता नहीं अचानक क्या हो गया, व्यर्थ संकल्पों की बाढ़ सी आती है मन में, उसको रोका नहीं जा सकता। कितने लोगों ने सुनाया कि व्यर्थ संकल्प अनकंट्रोल्ड होकर मन को परेशान कर रहे हैं। आप सब जान लें ये जो भरा हुआ था वो इमर्ज होने लगा है। किसी के बुरे संस्कार उसको तंग करेंगे। अब आपसी संबंधों में बहुत ज्यादा खटास हो जाएगी अगले 2-5 सालों में ही। हर व्यक्ति को उसके कर्मों की सजाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी और हॉस्पिटल्स भर जाएंगे मेंटल पेशेंट से, साइकेट्रिक पेशेंट, मन के रोगी बहुत बन जाएंगे। नींद की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, ब्रेन का बिल्कुल डल हो जाना, ब्रेन का बिल्कुल काम न करना, ऐसी स्थिति तेजी से सामने आ रही है। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा आज दादी दिवस पर आप दादी की एक क्वालिटी धारण कर लें, बहुत खुश रहना, बहुत हल्के रहना। दादी की ये दो क्वालिटीज हमने हमेशा देखी, क्योंकि कार्य में हम उनके साथ थे, रोज का हमारा नाता था। दादी जी हमारे पास शुरू में तो 5 बार रोज आती थी किचन में, फिर काम बढ़ने लगा 3 बार आती थी, फिर और काम बढ़ गया तो 1 बार रोज आती थी। बहुत जो खुश रहेंगे, जो बहुत हल्के रहेंगे, उन पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। खुद हल्के होंगे तो समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। भगवान उवाच है, सीख लें सभी, खुद हल्के तो समस्याएं भी हल्की, खुद हल्के तो बीमारियां भी हल्की, खुद हल्के, बहुत इंपॉर्टेंट बात तीसरी, खुद हल्के तो संबंध भी हल्के। रिलेशनशिप्स में जो कड़वाहट आ गई है, जो कोई एक दूसरे को भाता नहीं है, प्यार की दृष्टि समाप्त हो गई है, डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, माया भी फोर्स से काम कर रही है, इससे यदि आपको बचना है, अगली अटेंशन की बात, अब सुखी वही रहेंगे जो केवल अपनी चिंता करेंगे, और जो अपनी चिंता छोड़कर दूसरों की चिंता में जलेंगे, वो खुद भी चिंता की अग्नि में जलेंगे और दूसरों की चिंताओं को मिटा भी नहीं सकेंगे। इसलिए समय की डिमांड है, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाएं। समय की ये पुकार है, अपने को इतना समर्थ बनाना है कि हम दूसरों को मदद कर पाए। चिंताओं की अग्नि संसार में तेज होती जा रही है। बाबा ने जो कहा था बहुत साल पहले अनेक बार, संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, पहाड़ गिरने आरंभ हो गए हैं। इसलिए अपने को बहुत खुश रखना, अपने को बहुत सरल रखना, अपने को श्रेष्ठ स्वमान में रखना परम आवश्यक है। दादी जी की एक क्वालिटी जिसने बहुतों को सुख दिया और मुझे तो शायद सबसे ज्यादा दिया, दादी का मुरली सुनाना, मुरली में रस भर देना, पूरी सभा में वाइब्रेशंस फैला देना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान हम आत्माओं से बात कर रहा है। जो भी मुरली पढ़ें, आप में से बहुत सारी माताओं के घरों में गीता पाठशालाएं हैं, कई टीचर्स बैठे हैं, जब भी आप मुरली पढ़ें, मुरली में ऐसा ही रस भरें। आपको ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि लोग मुरली सुनने नहीं आते, आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मुरली क्लास में, हमारी क्लास में 2-4 लोग ही बैठे रहते हैं। आप मुरली में रस भर दो, मुरली का रस आत्माओं को खींच खींच कर आपके पास लाएगा। और इसी से जोड़ दूं मैं, हम सभी को अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए चाहिए ज्ञान का बल, जैसे योग का बल है, जैसे स्वमान का बल है, जैसे प्योरिटी का बल है, वैसा ही बल ज्ञान का बल है। ज्ञान की सुंदर सुंदर बातों को आप अपने जीवन में प्रयोग करते रहो तो अनुभव होता रहेगा कि ज्ञान हमारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देता है। ज्ञान हमें सच्चा सहारा देता है, ज्ञान हमें लाइट देता है, हमारी अंतर की ज्योति जगी रहती है, ज्ञान हमें रोज सवेरे जगा देता है। मैं एक बहुत सुंदर बात जो मेरे लिए सुंदर रही है अब तक आप सबके सामने रखता हूं। सभी बुद्धिमान माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जरा कैच कर लेना बाबा की इस बात को। तुम साक्षीपन की सीट पर सेट रहो, तुम साक्षीपन की सीट पर सेट रहो तो समस्याएं इस सीट के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ दूसरा महावाक्य, तुम अचल डोल स्थिति के आसन पर स्थित रहो तो समस्याएं इस आसन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। तो ध्यान दें हम सभी, ये ज्ञान का बल है हमारे पास। ज्ञान की ऐसी बातें याद रहेंगी तो अनेक समस्याओं में आपको बहुत सहारा महसूस होगा। ज्ञान ही तो है जिसको भूलने पर हम बाबा को भूल जाते हैं, ये ज्ञान ही तो है जिसे भूलने पर हम बाबा की मदद लेना भूल जाते हैं, हम बाबा की ओर न देखकर मनुष्यों की ओर देखने लगते हैं। दादी जी बहुत महान थी, मैं याद करता था दादी जी के शरीर छोड़ने पर बाबा ने जितने अच्छे संदेश दिए उतने संदेश अच्छे किसी के देह त्याग पर नहीं दिए थे कभी। हमें बहुत सुंदर रूप से इस बात की महसूसता होती रही कि बाबा का ऊपर से कार्य करने का तरीका बड़ा ही गुह्य है। गॉडली मिशनरी, इस संसार को बदलने की, इस युग को बदलने की गॉडली मिशनरी अति अति गुह्य और वंडरफुल है। मैंने बहुत समझा भगवान का कार्य सूक्ष्म रूप से किस तरह चल रहा है। हम तो केवल यहां मोटा मोटा देखते हैं, बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं, हम सब सेवाओं में लगे हुए हैं, परंतु गॉडली मिशनरी उसका सूक्ष्म कार्य वास्तव में बहुत ही गुह्य है। तो दादी जी के जीवन से तीन सुंदर बातें हम सीखेंगे। आपको याद होगा जो पुराने ज्ञान में है, दादी के देह छोड़ने से 5-7 साल पहले से बाबा ने वो बात कई बार कहनी प्रारंभ कर दी थी, फिर दादी के लिए वही बात कही। निमित्त भाव, निर्माण चित्त और निर्मल वाणी। हम देखते थे प्रैक्टिकल में दादी को मैंपन का बहुत जबरदस्त त्याग, बहुत जबरदस्त त्याग। हम लोग छोटे, दादी बहुत बड़ी, मिलती ऐसे ही थी जैसे हम उनके परिवार के मेंबर हैं। मैंपन नहीं कि मैं चीफ हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की चीफ हूं, नहीं, ये मेरा बड़ा परिवार है। हम भी उनसे ये सुंदर बात सीख लें, मैंपन का त्याग। याद दिला दूं, आज भी यश रत्नों की बात थी, बहुत गुह्य। एक मास पहले की मुरली में मैंपन के त्याग पर बहुत सुंदर महावाक्य आए हैं अव्यक्त मुरली में, जिसमें ये मुख्य रूप से था, अष्ट रतन बनने का आधार भी मैंपन का त्याग ही है। जिसको विजयमाला में आने का लक्ष्य हो वो मैंपन का त्याग करें। मैंपन का हमारे जीवन में कहीं स्थान न हो, हमें आभास हो जाए कि हमारे पास ईश्वरीय शक्तियां हैं। हमें यदि जीवन में बहुत सफलता मिल रही, मैं महाभारत का लास्ट सीन आपको सुना दूं। युधिष्ठिर को महसूस होने लगा, मेरे पास धर्म की शक्ति समाप्त होती नजर आ रही है। भीम को महसूस होने लगा, मेरा बल पता नहीं कहां चला गया। अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। युधिष्ठिर ने दूत को दौड़ाया, जाओ श्री कृष्ण को बुला कर लाओ। दूत 4-5 दिन में वापस आ गया इस संदेश के साथ कि श्री कृष्ण नहीं रहे, वो गए। पांडवों को महसूस हो गया कि हमारे साथ जो शक्तियां थी, हम जो बहुत पावरफुल थे, हम जो धर्म न्याय सत्य का राज कर रहे थे, उसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां थी। वो गए, शक्तियां भी गई, तो हम भी चलें। ये बात हम सब पांडवों के लिए है। ईश्वरीय शक्तियां हमसे निरंतर जुड़ी हुई हैं, इसलिए कहीं भी मैंपन हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। मैंपन आते ही हमारी दिव्यता नष्ट हो जाती है। मैंपन आते ही हमारे वाइब्रेशंस भारी हो जाते हैं। ये मैंपन ही है जो टकराव पैदा कराता है। ये मैंपन ही है जो सेवाओं में सबसे बड़ी बाधा है। जिनको अपनी सेवाओं का विस्तार करना हो, जो अपनी सेवाओं में दिव्यता भरना चाहते हो, जो चाहते हो सेवाएं केवल संदेश देने तक न रहें, हम आत्माओं को योगी बना दें, भगवान से जोड़ दें, वो मैंपन का त्याग कर दें और ये याद रखेंगे कि हमारे साथ निरंतर ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। दादी जी में ये तीनों विशेषताएं बहुत सुंदर थी। निमित्त भाव के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। निर्मलता, चित्त को निर्मल रखना, चित्त को शीतल रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। दादी जी को हम देखते थे, हमें भी पता होता था यज्ञ में क्या समस्याएं चल रही हैं, हमें पता होता था कितना काम चल रहा है, तो भी दादी को हमने कभी बोझिल नहीं देखा। जब मिलती थी तो बिल्कुल फ्रेश मुरली सुनाने आती थी। कभी नहीं अनुभव किया कि मन पर कोई बात अपना दबाव बनाए हुए है। बहुत निर्मलता थी और इसका एक ही आधार है जो हम सब भी सीख लें, बाबा की शक्तियों को पहचानना, उसकी शक्तियों में विश्वास। बहुत बड़ी गलती हो रही है ब्राह्मण महान आत्माओं से कि बाबा की शक्तियों में विश्वास खत्म हो जाता है, इसलिए टेंशन होती है, इसलिए अपनी स्थिति को खो देती हैं आत्माएं। आप इस बात पे जरा चिंतन करना, सर्वशक्तिवान हमें साथ दे रहा है, वो बाबा हमें साथ दे रहा है। सुन लें आप, बाबा ने अनेक बार इशारे में ये बात कही भी, बाबा अगर चुटकी बजाए, संकल्प कर दे, स्वर्ग स्थापित हो जाए, तो 1 सेकंड में ये नरक लोप हो जाएगा और इस धरा पर स्वर्ग आ जाएगा। ऐसी सर्वशक्तिवान सत्ता हमें साथ दे रही है। जो उसमें विश्वास करते हैं, जो अपनी जीवन नैया उसके हवाले कर देते हैं, जो उसकी शक्तियों को धारण करके समस्याओं को नष्ट करते हैं, उनका जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाता है। तो हम दादी जी से सीखते हैं कि अपने जीवन को निर्मल भी बनाएं और बहुत शक्तिशाली भी। हमें समस्याओं के समय कई विधियां अपनानी होती हैं। हम बाबा को समर्पित भी कर देते हैं समस्याएं, तो बाबा हमें इतना शक्तिशाली भी बनाना चाहते हैं कि हम औरों की भी समस्याओं को हरने वाले बन जाएं। ध्यान दें इस बात पर, केवल बाबा से हमेशा मदद मांगने वाले नहीं लेकिन बहुत शक्तिशाली। देखो बाबा हमें इतना शक्तिशाली बनाता है कि सारे विश्व को नया बनाकर सतयुग की बागडोर हमारे हाथ में सौंपकर निश्चिंत होकर वापिस चला जाता है। मैंने एक बहुत अच्छी चीज सुनी, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है तो उन लोगों ने कोई फिल्म बनाई है। कैसी फिल्म? बिल्कुल अंत का सीन है, लक्ष्मी नारायण गद्दी पर विराजमान हैं, महादेव जी ने उन्हें तिलक दिया और कहा मेरा कार्य पूरा हुआ, अब तीनों लोग तुम्हारे हवाले हैं, मैं चला अपने कैलाश पर्वत पर। यही सीन जो अब होने जा रहा है, हम सभी इस सीन को अनुभव करेंगे। देखेंगे तो सब नहीं तो हम बहुत शक्तिशाली भी बने। दादी जी बहुत शक्तिशाली थी और अपनी टीम को हमेशा पावरफुल बनाए रखती थी। किसी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, कार्यों की सफलता के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति अपनी टीम को बहुत पावरफुल बनाकर रखे। तो सभी, चाहे अपने परिवार को, चाहे कार्य क्षेत्र में अपनी टीम को बहुत ही पावरफुल बनाएंगे। अब एक बहुत अच्छी और सुंदर बात आपके सामने है और सभी इस बात को सीख लें। देखो दादी जी का भी सवेरे का टाइम बहुत सुंदर बीतता था, वो क्लासेज में आके सुनाया करती थी कि वो सवेरे क्या क्या करती हैं। एक मुरली रोज पढ़ती थी सवेरे ही पहले, फिर योग, फिर तैयार होकर मुरली सुनाने। अब मैं आपको वो एक बात बताने जा रहा हूं जिससे आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। सवेरे जब हम आंख खोलते हैं, बहुत अटेंशन से सुन लेंगी, जो माताएं बहुत कम पढ़ी लिखी हैं वो भी ध्यान से सुन लेंगी। सवेरे जब हम आंख खोलते हैं तो हमारा अंतर मन जगा रहता है। उस समय अपने अंतर मन में जो सुंदर विचार आप भर देंगी बस वही जीवन बन जाएगा। अब क्या करना चाहिए सवेरे उठते ही? सोच लो सभी, जिनका योग न लगता हो, जिनको सवेरे उठते नींद आती हो योग में, जिनको कोई व्यर्थ संकल्प चलते हो, वो बैठकर 108 बार लिखें उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, या मुरली पढ़ लें, अव्यक्त मुरली के पावरफुल पॉइंट्स पढ़ लें, वो आपके अंतर मन में चले जाएंगे और वही आपका जीवन बन जाएगा। बहुत अच्छी तरह अपनी सोच में इस बात को समा दें कि सवेरे पहले 10 मिनट हमारे लिए भाग्य बनाने का समय है, अपने भविष्य को बदलने का समय है, अपने को चार्ज करने का समय है, अपने अंदर सुंदर सुंदर विचारों की शक्ति भरने का समय होता है। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करके रोज पहला संकल्प यही करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। इसका प्रभाव देखना। दूसरा संकल्प करना, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं, और ऊपर हाथ उठाकर बाबा को कहना, आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छी बुद्धि दी, सद्विवेक दिया, दिव्य बुद्धि दी, श्रेष्ठ ज्ञान दिया, रास्ता बताया, आपको बारंबार शुक्रिया। क्या सवेरे सोचना है, बहुत सुंदर तरीका आप अपना लें, बाबा से हमें क्या क्या मिला उसकी एक लिस्ट बना लेना, और उसको याद करके बाबा को शुक्रिया अदा करना। मन खुशियों से भरता जाएगा और जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। बहुतों का ये अनुभव हो चुका है, सवेरे सवेरे अगर स्वयं को इस तरह चार्ज कर दें तो अनेक समस्याएं सहज ही समाप्त हो जाती हैं। माताएं सामने बहुत बैठी हैं, मैं आप सबको अब लास्ट बातें कहूंगा। समस्याओं से घबराएंगी नहीं, समस्याएं आने पर अगर अपनी स्थिति बिगाड़ दी तो याद रखना, समस्याएं बिगड़ती जाएंगी और बुरी होती जाएंगी। भगवानो वाच है, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो आत्मा अपनी स्थिति को बनाए रखना जान लें, उनका जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। सभी को दूसरों को वाइब्रेशंस देने हैं, अपने को भी वाइब्रेशंस देने हैं, अपने ब्रेन को भी वाइब्रेशंस देने हैं, अपने परिवार को भी वाइब्रेशंस देने हैं। अब लास्ट बात, जिन जिन को अपने घरों को निर्विघ्न, समस्याओं से मुक्त, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से भरपूर करना है, वो सारे दिन में छोटी सी बात है, तीन बार योग में बैठें, 15 मिनट से 20 मिनट तक, ये एक घंटा योग हो जाए सारे दिन में। पहली बार 6 बजे के आसपास सवेरे घर में शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं, दूसरी बार दोपहर के आसपास घर में शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाएं, तीसरी बार शाम के समय अपने घर में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाएं। ये तीन बार अगर माताएं योग कर दें तीन बार, तो अनेक बातें समाप्त हो जाएंगी। आपके बच्चों की, जिनकी आप बहुत चिंता करते हैं, आपका योग, आपकी साधना, आपकी पवित्रता, आपके पुण्य कर्म आपके पूरे परिवार को बल देते रहेंगे। ये बात आपको भूलना नहीं है। आप यज्ञ सेवा जो करेंगे, श्रेष्ठ कर्म जो करेंगे, दूसरों को सुख देंगे, आपके कर्मों का बल, आपकी स्थिति का बल आपके परिवारों को मिलता रहेगा। तो आज के दिन न केवल हम दादी जी को याद कर रहे हैं, लेकिन ये सब महानताएं दादी जी ने अपने जीवन में लाई थी, इसलिए वो महान बनी। हम भी अपने विचारों को महान बनाएं, हम भी दादी जैसे महान बन जाएंगे और बाबा के दिल को जीत लेंगे। मैं बहुत ध्यान से देखता था, बाबा उन्हें न केवल प्यार करते थे लेकिन बहुत सम्मान देते थे। ये मैंने बार बार देखा। तो ऐसे जिन्हें भगवान भी सम्मान दे, जिन पर भगवान भी कुर्बान हो, ऐसी दादी जी का आज ये पुण्यतिथि है। हम सब स्नेह से दिल की पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। माताएं धीरे धीरे जाएंगी शांति स्तंभ पर, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। और अब हम क्लास को समाप्त कर देते हैं। सभी बहुत पावरफुल योग के वाइब्रेशंस के साथ उठेंगे, योग करेंगे। पहले माताएं योग करके उठेंगी, गीत बजाएंगे लाल लाइट।
प्रकाश स्तंभ यादगार है, प्रकाश मणि दादी जी का। सबल की शक्ति से निर्बल को बलवान बनाने का, प्रकाश स्तंभ यादगार है। Just come.